मॉल में यज्ञ की आशिका के साथ हुई बहस के बाद उसका मूड पहले से ही खराब हो चुका था। फिर भी वो वहां देर तक शॉपिंग करता रहा। जब यज्ञ वापस घर लौट रहा था तब उसकी नज़र आशी पर गई, जो तृप्ति बजाज के साथ घूम रही थी। जब से उन्हें आशिका की कमजोरी के बारे में पता चला था तब से आशी खुश थी और उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब तृप्ति आशिका की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अभिमान की जिंदगी से अलग कर देगी। यज्ञ को एक बार के लिए लगा कि उसे किसी तरह का भ्रम हुआ है, लेकिन उसने थोड़ा करीब से जाकर देखा तो वो आशी ही थी। उसे तृप्ति के साथ देखकर यज्ञ को एक पल के लिए भी हैरानी नहीं हुई। उसने गहरी सांस लेकर तंज भरे लहजे में कहा, इससे यही उम्मीद थी। जिन लोगों ने हमारी फैमिली के साथ बुरा किया होता है, ये उन्हीं के साथ घूमती क्यों रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका तृप्ति बजाज के साथ कोई रिश्ता हो? आजकल ये औरत इसे कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रही है। यज्ञ को आशी पर हमेशा से शक था। उसने काफी बार आशी की डिटेल्स भी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अनाथाश्रम से सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे, जिससे यज्ञ का शक यकीन में बदल गया था। आशी के बैकग्राउंड के बारे में वो कभी पता नहीं लगा पाया और बाद में अब्रॉड जाने के बाद उसे इसके बारे में पता लगाने का मौका भी नहीं मिला। जो भी था, पर फिलहाल आशी को तृप्ति के साथ देखकर यज्ञ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दूर से उनकी कुछ फोटोज निकाली और कुछ देर बाद वो घर पहुंच गया था। शाम का वक्त होने की वजह से आशुतोष घर पर ही थे। काजल और आशुतोष के घर में होने के बावजूद एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। वे दोनों साथ में लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नहीं बैठा हुआ है। इस बीच यज्ञ गुस्से में उनके पास पहुंचा। उसने दांत भींचते हुए पूछा, क्या आपको कोई खबर भी है कि आपकी लाडली बेटी कहाँ है? आशुतोष और काजल दोनों ने ही उलझन भरी निगाहों से यज्ञ की तरफ देखा। उनमें से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले आशी घर पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अब क्या तुम मेरे हर एक मोमेंट का हिसाब रखोगे, या मुझे खुलकर कहीं बाहर आने जाने की भी आज़ादी नहीं है? मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आशी अंदर की तरफ आते हुए बोली। यज्ञ का एटीट्यूड और उसका बेवजह चिल्लाना देखकर आशी भी गुस्से से लाल हो गई थी। आशुभोष ने एक नज़र आशी को देखा। उसके हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने पूरा दिन शॉपिंग करने में बिताया होगा। आशुतोष ने गहरी सांस ली और फिर यज्ञ की तरफ देखकर कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। काजल यज्ञ के पास आई और प्यार से बोली, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, तुम इसे देखकर इतना चिढ़ते क्यों हो? कम से कम अब तो थोड़ा प्यार से पेश आओ। तुम जानते हो इसके साथ कितना कुछ हुआ है और हमें इसका मूव ऑन करने में साथ देना चाहिए। यज्ञ ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। वो बोला, मुझे नहीं लगता कि इसे मूव ऑन करने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? हम इसका परिवार हैं, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? काजल ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा। इसने कभी हमें अपनी फैमिली समझी भी है? जब देखो हमारे दुश्मनों के साथ रिश्ता बनाने की जिद पर अड़ी रहती है। पहले वो अभिमान राजवंश, तो अब तृप्ति बजाज। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ, बताता नहीं इसकी करतूत के बारे में दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। यज्ञ गुस्से से बोला और उसने अपना मोबाइल निकालकर आशुतोष और काजल को कुछ तस्वीरें दिखाई। उन फोटोज में आशी तृप्ति के साथ घूम रही थी, दोनों हंसकर बात कर रही थी। अगर कोई और शख्स होता तो फिर भी काजल और आशुतोष इस बात को जाने देते, लेकिन वो तृप्ति के साथ थी। वही तृप्ति जिसने उनकी जिंदगी की खुशियों को छीनकर उनकी शादीशुदा जिंदगी को लगभग बर्बाद कर दिया था। आशी ने भी उन तस्वीरों को देखा तो वो सकपका गई थी। वो अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले यज्ञ ने आगे कहा, इतना काफी नहीं है, मैं आपको और बताता हूँ। इससे पूछिए कि आज सुबह ये राजवंश मेंशन में तैयार होकर उस लड़की की जगह मुंह दिखाई की रस्में क्या कर रही थी। राजवंश फैमिली उस लड़की के बजाय इसे अपनी बहू के तौर सबसे मिलवा रही थी और ये उनका साथ भी दे रही थी। ना जाने ये कब तक खुद को और हमें धोखे में रखती रही थी कि वो लड़का कभी इसके साथ नहीं आने वाला। वो खुद इसे प्यार नहीं करता है। सच कहूं तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तक मुझे अभिमान राजवंश पसंद नहीं था, पर कहना पड़ेगा इस लड़की से शादी ना करके वो बच गया। यज्ञ आशी को खरी खोटी सुनाई जा रहा था और अब आशी से बर्दाश्त होना बंद हो गया था। वो जोर से चिल्लाई और बोली, बस करो, चुप हो जाओ तुम। हाँ, मैं गई थी सुबह उसके घर पर। तो क्या, उसकी फैमिली अभी भी मुझे अपनी बहू मानती है? वो जगह हमेशा से मेरी थी जिसे उस लड़की ने छीन लिया। और रही बात तृप्ति बजाज के साथ घूमने फिरने की, तो उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया है, ना कि मेरी फैमिली की तरह मुझे मूव ऑन करने की सलाह दी है। कम से कम कोई बाहर वाला तो मुझे समझ रहा है। अफसोस कि मेरे खुद के घर के लोग भी मुझे नहीं समझ पाए। आशी की बात सुनकर आशुतोष और काजल दंग रह गए थे। वहीं यज्ञ हंस रहा था। उसकी ये हंसी आशी का मजाक बना रही थी और साथ ही उसे चिढ़ा रही थी। आशुतोष ने यज्ञ की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम हंसना बंद करोगे और बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा हूँ और तुम इंटर्नशिप के लिए वापस अब्रॉड जा रहे हो। सही है आपका, अभी भी मुझे सजा दे रहे हो जबकि आपको इसकी गलतियां नहीं दिखाई दे रही हैं। निकाल दीजिए मुझे फिर से घर से, जैसे आपने उसे अपने दिल से निकाल दिया है। आई बेट यू एक दिन ये लड़की आपको धोखा देगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही था। आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चला जाऊं? तो ओके, आई प्रॉमिस यहां से जाने के बाद कभी मैं यहां कदम भी नहीं रखूंगा। यज्ञ ने भी गुस्से में जवाब दिया और वो आशी को घूर कर अपने कमरे में जाने लगा। यज्ञ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, यहाँ से कहीं नहीं जाना है। काजल पीछे से यज्ञ को आवाज लगाती रही, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया था। वहीं उसके जाते ही काजल ने आशुतोष की तरफ देखकर नम आंखों के साथ कहा, आप बार बार उसे घर से नहीं निकाल सकते हैं, इस बार उसकी कोई गलती नहीं है। उसे इस घर से दूर रहना होगा, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आता है पागल हो जाता है। हम भी उसके जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी तरह पागलों की तरह बर्ताव नहीं करते। बेहतर होगा कि ये इस घर से और उसकी यादों से दूर रहे, क्योंकि यहाँ आने पर यज्ञ को उसकी ज्यादा याद आती है, आशुतोष ने जवाब दिया। आशी के चेहरे पर राहत के भाव थे। यज्ञ की बदतमीजी के चलते उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो दबे पांव अपने कमरे में जाने लगी कि तभी आशुतोष ने पीछे से सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है। आशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वो जल्दी से आशुतोष की तरफ पलटी और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। अगर वो औरत गिल्ट के चक्कर में ही मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें गलत इंसान पर भरोसा कर रही हो। आगे से अगर तुम उसके साथ नजर आई तो मुझे वही फैसला तुम्हारे लिए लेना होगा जो मैंने फिलहाल यज्ञ के लिए लिया है, आशुतोष ने जवाब दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आशी उनसे बहस करना चाहती थी, लेकिन काजल ने उसे जाने का इशारा किया। आशी ने गहरी सांस ली और फिर वहां से चली गई थी। वहीं उसके जाते ही काजल ने आशुतोष की तरफ देखा,
वो बच्ची है, हमें उसे समझाना होगा। तृप्ति जैसे लोग इमोशंस का फायदा उठाकर ही सामने वाले के दिमाग से खेलते हैं। उसे लग रहा होगा कि हमारी बेटी टूटी हुई है और वो उसका साथ देकर हम तक वापस पहुंच सकती है, काजल ने सख्त आवाज में कहा। वो इतनी भी बच्ची नहीं है कि उसे अपना सही गलत समझ नहीं आए। खैर, उम्मीद है कि इस बार कोई गलती ना करे, वरना मैं बार बार यज्ञ को भी सजा नहीं दे सकता हूँ, आशुतोष ने जवाब दिया और फिर वहां से अपने स्टडी रूम में जाने लगे। उनके जाने के बाद काजल सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई थी। जब भी यज्ञ और आशी की लड़ाई होती थी तो उसका नतीजा कुछ ऐसा ही निकलता था। आशुतोष इस बारे में बात नहीं करते थे और हर बार यज्ञ को सजा के तौर पर घर से बाहर भेज दिया जाता था। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आशी की हर डिमांड पूरी हो ही जाती थी। आशुतोष अपने स्टडी रूम में आ गए थे और वो काफी परेशान भी लग रहे थे। उन्होंने तुरंत अभिमन्यु को मैसेज किया, मिस्टर राजवंश, आपने कहा था कि मेरी बेटी जिंदा हो सकती है। मैंने आपको अपनी मर्जी से ब्लड सैंपल भी दिया था। रिपोर्ट्स आने में कितना टाइम लगेगा? अगले 5 मिनट में अभिमन्यु का जवाब आया था, जिसे देखकर फिर से आशुतोष के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। अभी मुझे उसका ब्लड सैंपल मिला नहीं है और वो इतना आसान भी नहीं है। आपको इंतजार करना होगा मिस्टर सिंघानिया, अभिमन्यु ने मैसेज में लिखा था। हाँ, इंतजार ही कर सकता हूँ और पिछले 17-18 सालों से इंतजार ही कर रहा हूँ, आशुतोष ने गहरी सांस ली और एक बार फिर इन सब से दूर जाने के लिए उन्होंने काम का सहारा ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त अभिमान और आशिका ऑफिस के बाद घर लौट गए थे। दोनों साथ में अपने रूम में जा रहे थे कि निशा अचानक से अभिमान के सामने आ गई थी। सुबह जो भी हुआ था उसके बाद निशा को अभिमान से बात करने का मौका नहीं मिला था। उसने मैसेज और कॉल भी किए थे पर अभिमान ने इग्नोर कर दिए थे। अभिमान, मेरी बात, निशा ने भारी आवाज में कहा, लेकिन अभिमान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अपने कमरे में चला गया था। आशिका वहीं पर रुकी और निशा की तरफ देखने लगी। निशा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो ये सब देखकर बहुत खुशी मिल रही होगी ना, यही तो तुम चाहती थीं कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। लो, हो गया, और अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, पहले मेरे पति तो अब मेरा बेटा, निशा आशिका को सुनाई जा रही थी, जबकि आशिका ने सिर हिलाकर सख्त आवाज में कहा, आप अपनी गलतियों के लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हैं? आपका पति पहले से आपके साथ नहीं रहता था, और ये मत सोचिए कि मेरे अलावा उनके किसी और लड़कियों के साथ अफेयर नहीं है। रही बात आपके बेटे की, तो वो सुबह आपकी हरकत की वजह से नाराज है। आप इन सब का इल्ज़ाम मुझ पर डाल भी कैसे सकती हैं, जबकि पूरी गलती आपकी थी? तो तुम अब मुझे सुना रही हो, निशा ने हैरानी भरे लहजे से कहा। हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगा कि ये सुनाने का खेल सिर्फ आप ही खेल सकती हैं, आशिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। और हाँ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि अभिमान आपसे नाराज हो जाए? सबसे पहले आप झूठ बोलना और दिखावा करना बंद कीजिए। आप सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि मैं उसकी वाइफ हूं और आपका हस्बैंड कोई साधु महात्मा नहीं है? निशा आशिका की तरफ देखती रह गई और वो उसे अच्छा खासा सुनाकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में आते ही आशिका ने सबसे पहले चेंज किया, क्योंकि उस ड्रेस में बहुत ही अजीब लग रहा था। कम्फर्टेबल कपड़े पहनने और फ्रेश होने के बाद अभिमान और आशिका दोनों बालकनी में डाइनिंग टेबल पर थे। आशिका ने देखा कि अभिमान खाने के बजाय बालकनी से बाहर की तरफ देख रहा था। आशिका ने गहरी सांस ली और हल्की सख्त आवाज में बोली, देखो, जिस तरह तुमने दोपहर में मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। चुपचाप खाना खाओ, मुझे पता है तुम स्ट्रेस्ड हो, पर खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये समझा भी कौन रही है जो काम के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं देती, अभिमान ने हल्का सा हंसकर कहा और फिर आशिका के कहने पर खाना खाने लगा। आशिका ने उसके प्रति परवाह जताई, इतना ही उसके लिए काफी था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इशिका अभी भी राजवंश एम्पायर्स में अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उसके सामने पृथ्वी खड़ा हुआ था।
इशिका के चेहरे के भाव गंभीर थे और इशिका के सामने काफी सारी फाइल्स खुली हुई थी। आपका शक सही है मिसेज राजवंश, आपके कहने पर मैंने गाड़ी के डैशकैम की फुटेज देखी थी जिसमें मिस्टर राजवंश की गाड़ी के पीछे काली गाड़ी को देखा गया है। ऐसा लग रहा है कोई उनका पीछा कर रहा है, बट डोंट वरी, मैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, पृथ्वी ने आश्वासन देते हुए कहा। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो उस खतरे का अंदाजा पहले ही लगा चुकी थी जो उनकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था।